नास्तिक लोग प्रकृति और पुरुष के संयोग के निरीश्वर सांख्य दर्शन में विश्वास करते हैं। वे केवल पदार्थ को मानते हैं और उनकी ये धारणा है कि मिश्रण की कुछ परिस्थितियों में प्राण का उदय होता है जो पुरुष या भोक्ता के रूप में प्रकट होता है। उन आत्मा को भी नहीं मानते हैं। फिर पदार्थ और प्राण के संयोग से अनेक प्रकार की सृष्टि होती है। नास्तिक वेदों का आदेश भी नहीं मानते। उनके अनुसार ये वैदिक आदेश मात्र ऐसे सिद्धांत हैं जिनका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रथु महाराज ने सुझाव रखा कि आस्तिक लोग क्या करें, नास्तिकों के विचारों का खंडन करें कि श्रेष्ठ बुद्धि की व्यवस्था के बिना अनेक प्रकार की सृष्टियां संभव नहीं है। कोई श्रेष्ठ बुद्धि होगी यज्ञपति, कोई होंगे भगवान जिनके कारण अनेक प्रकार की सृष्टि हो रही है। नास्तिक लोग अस्पष्ट रूप से कहते हैं कि विभिन्न सृष्टियां संयोग बस बनती हैं। नास्तिक लोग क्या कहते हैं, अगर कोई ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा बलवान है, तो कहते हैं तो बाई चांस हो गया ऐसा। किंतु आस्तिक लोग वेदों के आदेशों पर विश्वास करने के कारण वेदों के निर्देशानुसार ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सारी की सारी वर्णाश्रम व्यवस्था किस लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों या कि ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों के कर्तव्यों के पालन हेतु बनाए गए विधि विधान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बने हैं। यद्यपि आजकल तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों ने मूल संस्कृति खो दी है, अब तो केवल कहने मात्र के लिए है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, शूद्र है, लेकिन वो मूल संस्कृति तो समाप्त हो गई है, तो भी वे जन्म अधिकार से अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होने का दावा करते हैं। पर वे ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भगवान विष्णु की पूजा के लिए हैं। चार वर्ण और चार आश्रम किस लिए हैं, भगवान की पूजा करने के लिए है। शंकराचार्य ने जो घातक मायावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ईश्वर निराकार है, वह वेदों के आदेशों से मेल नहीं खाता, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी चिंतकों को भगवान के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराधी बतलाया है। वैदिक प्रणाली के अनुसार जो वेदों की आज्ञाएं नहीं मानता वह नास्तिक है। जब भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का उपदेश दिया तो उन्हें वेदों के प्रमाण को बाध्य होकर इनकार करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वेदों के अनुयायियों ने उन्हें नास्तिक मान लिया। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बौद्ध दर्शन के अनुयायियों को नास्तिक बतलाया क्योंकि वे वेदों के प्रमाण का निषेध करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य के अनुयायियों को बौद्धों से अधिक घातक मानते थे क्योंकि वे छल पूर्वक वेदों के प्रमाण को स्थापित करना चाहते थे, किंतु वास्तव में वे बौद्धों के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते थे। तो मायावादी ज्यादा घातक हैं। जो बौद्ध हैं वो तो वेदों को ही नहीं मानते हैं, है ना, तो वो तो नास्तिक हैं। लेकिन जो मायावादी सिद्धांत है वो वेदों के आधार पर भी जो है ना बौद्ध मत को ही पुष्ट कर रहा है, तो वो ज्यादा घातक है। किंतु वास्तव में भी बौद्धों के मायावादी सिद्धांत का अनुसरण करते थे। शंकरवादी दार्शनिकों का यह सिद्धांत है कि हमें ईश्वर का स्वरूप कल्पित करना होता है। मायावादी क्या कहते हैं कि आपको ईश्वर का रूप की कल्पना करनी पड़ेगी पहले, और बाद में फिर क्या होता है, बाद में ईश्वर नहीं रहता, बाद में आप ईश्वर बन जाते हो। कितना गलत सिद्धांत है। मायावादी नास्तिक हैं, लेकिन वेदों के नाम पर भी जो ना वो वेदों के विरुद्ध सिद्धांत का प्रचार करते हैं। तो ईश्वर की सत्ता के निषेध से कहीं अधिक घातक है ये। नास्तिकों और मायावादियों द्वारा इस प्रकार के सिद्धांत बनाने के बावजूद श्री कृष्ण भावनावृत के अनुयायी भगवत गीता में दिए गए आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, क्योंकि भगवत गीता को वैदिक शास्त्रों का सार माना जाता है, भगवद गीता में 18:46 कहा गया है, यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वम् इदं ततम् स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूजकर सिद्धि प्राप्त करता है। इससे सूचित होता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल कारण है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, जन्मादेश्यतः, स्वयं भगवान ने भी भगवद गीता में पुष्टि की है, अहम सर्वस्य प्रभुः, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूं। अतः ये निष्कर्ष निकला कि दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो है संसारी कर्म और दूसरे हैं यज्ञार्थ कर्म, यज्ञार्थात कर्म। जो कर्म यज्ञ के लिए नहीं होता वो बंधन का कारण बनता है। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधना, विष्णु के यज्ञ हेतु कर्म करना होता है, अन्यथा यह कर्म मनुष्य को बंधन में डालता है। भगवद गीता 3:9। ये कर्म बंधन प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है, आप समझे ना। ये भौतिक जीवन प्रकृति द्वारा उपस्थित अवरोधों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष होता है। असुर लोग इन अपराधों पर विजय पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और प्रकृति की शक्ति से अज्ञानी जीवात्माएं कठिन परिश्रम करके सुखी बनती रहती हैं। ये माया कहलाती है। कठिन जीवन संघर्ष के कारण ये पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं। फिर पृथ्वी महाराज अपनी प्रजा से क्या कहते हैं, अहो ममामी वितरंत्यनुग्रहम हरिम गुरुम यज्ञ भुजाम मधीश्वरम स्वधर्म योगे नेजन्ति माम का निरंतरम छोणि तले धृत दृढ़ व्रतम। क्या कहते हैं पृथ्वी महाराज, श्री भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी और भोक्ता हैं, वे परम गुरु हैं। इस पृथ्वी के जो नागरिक जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, वे मुझ पर बहुत कृपा कर रहे हैं। अतः हे नागरिकों, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोग जो है अपने स्वधर्म योग के द्वारा जो यज्ञपति भगवान की पूजा कर रहे हो, तो ये आप लोग मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हो, पृथ्वी महाराज कह रहे हैं। आप तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिखते हैं, महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को भक्ति करने का जो उपदेश दिया वह दो रूपों में समाप्त होता है। उन्होंने बारंबार नवागंतकों को तो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार भक्ति करने का उपदेश दिया है, किंतु यहाँ पर वे उन भक्तों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो पहले से समस्त यज्ञों के भोक्ता और अंतर्यामी के रूप में परम गुरु परमेश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। यहाँ पर गुरु शब्द का विशेष रूप से उल्लेख है, जो परम पुरुष को चैत्य गुरु के रूप में सूचित करता है। भगवान जो है क्या है, हरिम गुरुम यज्ञ भुजा मधीसुरम, भगवान जो है गुरु है, है? क्यों, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, चैत्य गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में सूचित करता है। परमात्मा रूप भगवान सबों के हृदय में स्थित है और वे प्रत्येक जीव को अपनी शरण में आने और भक्ति में संलग्न होने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अतः वे आदि गुरु हैं, भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, आदि गुरु। विबद्ध जीव को आंतरिक और बाहरी रूप से सहायता करने के लिए स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। आंतरिक गुरु हृदय पहले से बैठे हुए हैं और बाहरी गुरु से भी जो ना वे उपदेश दिलाते हैं, मिलवा देते हैं। जब आपको जो है इच्छा होती है भगवान के बारे में जानने की, तो वे अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं वो आपको बाहर से भी किसी गुरु से मिला देते हैं, और इस प्रकार से आप बाहर से भी भगवान के बारे में सुनते हैं और अंदर से भी भगवान के बारे में सुनते हैं, तो क्या होता है, आपको बात स्पष्ट हो जाती है। अंदर से भी ज्ञान आ रहा है और बाहर से भी ज्ञान आ रहा है ना। अंदर से भगवान प्रसन्न है तो वही ज्ञान अंदर से भी दे रहे हैं और बाहर से भी ज्ञान दे रहे हैं। जब मिलान हो जाता है तो आपको स्पष्ट हो जाता है ना। लेकिन अगर आप अपराध करते हैं गुरु का, साधुओं का, भक्तों का अपराध करते हैं, तो हृदय के अंदर भगवान प्रसन्न नहीं है। अब बाहर से अगर कोई गुरु अगर आपको समझाएंगे भी, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हृदय के अंदर भगवान आपको वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, है ना। इसलिए हृदय के अंदर भगवान को भी प्रसन्न करना होगा कि किसी प्रकार का अपराध ना हो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वे बद्ध जीव को आंतरिक रूप तथा बाहरी रूप से सहायता करने के लिए स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए यहां पर उन्हें गुरुम कहा गया है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी भर के सारे लोग महाराज पृथु की प्रजा थे, उनमें से अधिकांश भक्ति में लगे हुए थे। उन्होंने उन सबों को भक्ति करने तथा इस प्रकार उन पर अनुग्रह करने के लिए विनीत भाव से धन्यवाद दिया। दूसरे शब्दों में जिस राज्य में प्रजा और राज्याध्यक्ष भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वहां वे एक दूसरे की सहायता करके लाभान्वित होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जो है समझाया है प्रभुपाद जी ने। तो यज्ञ जो है सूत्र हमको समझना चाहिए, कर्म बंधन से अगर बचना है तो यज्ञ के लिए कर्म किया जाए, है ना। तो हर समय अगर आप बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। इतना सरल यज्ञ है ना, कलयुग में इतना सरल यज्ञ है, आप इसे छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये जो है आपको संकट से भी बचाएगा। भगवान ने अपने नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति अर्पित कर दी है ना, यज्ञ अर्थात। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ है, और हरे कृष्ण महामंत्र के लिए भी अगर आप कर्म करते हैं तो वो सब कर्म यज्ञ हो जाएगा, यानी नाम का प्रचार। भगवान नाम के प्रचार में जीवन को अर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, ये नाम का पहला अपराध है, क्योंकि वो यज्ञार्थात यज्ञार्थ कर्म कर रहे हैं आजीवन, जीवन भर के लिए, है ना। तो प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचारक प्रवर कहलाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र प्रचारक प्रवर प्रभुपाद जी को कहा जाता है, है ना। तो वो जो है ऐसे महात्मा हैं, क्योंकि कर्म बंधन से बिल्कुल परे हैं ऐसे महात्मा लोग, है ना। और उनकी अगर निंदा की जाए तो फिर जो है आप यज्ञ नहीं कर सकते, फिर आप कर्म बंधन से बंधोगे, है ना, क्योंकि यज्ञ के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर यज्ञ के विरुद्ध कर्म कर रहा है, नाम के विरुद्ध कर्म कर रहा है, भक्तों के विरुद्ध कर्म कर रहा है, तो फिर उसको कर्म बंधन है, है ना। तो इतना सरल है, सुगमम भगवन नाम जेहवा चावश वर्धनी, इतना जो ना सरल है भगवान का नाम, और जेहवा आपके बस में भी है, जेहवा आपके बस में भी है। आप चाहें तो नाम लेते रहें और हर समय नाम लेते रहें, कौन रोकता है आपको। तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्य मदः परम, इससे बढ़कर के क्या आश्चर्य है कि फिर भी लोग नरक में जाते हैं। इतना सरल यज्ञ है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। जप यज्ञ हरे कृष्णा आप ऐसे ही बोलते हो, केवल जिह्वा हिला दो हरे कृष्णा, इतना कहने से जो है आपका यज्ञ होता है, है ना। अपराधों से बचकर के अगर आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो आपका जो जीवन है ये यज्ञमय हो जाता है, है ना। और कर्म बंधन से बिल्कुल मुक्त, तो कोई कर्म बंधन नहीं है, है? अच्छा, आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि मायावादी भगवान के ज्यादा करीब हैं या सकाम कर्मी? जो मायावादी हैं वो तो कृष्ण के अपराधी हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी हैं। तो वे चूंकि भगवान का जो है साकार रूप है, तो उसका निषेध करते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो ये तो जो है ना घोर अपराध है, और जो सकाम कर्मी हैं तो वे जो है ना वैदिक कर्मकांड को स्वीकार करते हैं। हाँ, तो इस तरह से जो है ना वो स्वर्ग को भोगना चाहते हैं। तो वैसे एक दृष्टि देखा जाए तो कर्मी से श्रेष्ठ है ज्ञानी, कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि कर्मी जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति भोगना चाहता है, लेकिन इस भौतिक संसार में जो है वो कर्म के बंधन से तो बंधता है, और जो ज्ञानी है वो कर्म बंधन से छोड़ना चाहता है, कर्म के बंधन से छोड़ना चाहता है, लेकिन विधि गलत है उसकी, है ना। तो हालांकि वो कर्मी से तो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कर्म बंधन से छोड़ना चाहता है, जबकि कर्मी कर्म बंधन से नहीं छोड़ना चाहता है, कर्म का फल भोगना चाहता है ना। तो वो एक जैसे तो ज्यादा समझदार है, ज्ञानी है, लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं है उसको, इसलिए वो कर्म बंधन से छूट जाता है, एक फिर से कर्म से बंध जाता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगता नहीं है ना। तो ये उसी प्रकार से है कि एक व्यक्ति है जेल के अंदर, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो है जेल के अंदर ही रह करके और ज्यादा सुख सुविधाएं पाना चाहता है जेल के अंदर, है ना। तो कुछ ऐसे काम करता है कि जेल के अधिकारियों को प्रसन्न करके जेल के अंदर कुछ ज्यादा अपनी सुख सुविधाएं बढ़ा लेता है, लेकिन रहता जेल के अंदर ही है, तो वो तो कर्मी हो गया, इस संसार के बंधन में रह करके ही अपने कर्म के फल को जो है वो भोगना चाहता है। और जो ज्ञानी है वो दूसरे व्यक्ति की तरह है, जो जेल के अंदर है और जेल के बाहर निकलना चाहता है ना, लेकिन वो कुछ काम नहीं करना चाहता है कि मैं जो है ना सरकार के नियमों के अनुसार काम करूं सरकार को प्रसन्न करने के लिए और कुछ मुझे सही नौकरी मिल जाए, है? तो उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, किसी कारण से किसी प्रकार से जेल से बाहर निकल भी जाता है, लेकिन फिर से जेल के अंदर आ जाता है, क्यों? क्योंकि सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहा है कि नहीं। तो जो मायावादी है तो वो जो है कर्म बंधन से छूटना चाहता है, जन्म मरण से छूटना चाहता है, तो बहुत कष्ट से अगर वो छूट भी जाता है तो चूंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहा है वो, तो इसलिए फिर से वो कर्म बंधन में आ जाता है, फिर से जेल के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। कोई पॉकेट मार है, लोगों की जेब काटता है, जेल के अंदर घुस गया, अब जेल से अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए, उसको अच्छा काम ना दिया जाए, अब कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो फिर से चोरी करेगा, जेब काटेगा और फिर से जेल के अंदर आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे कर्मी इससे श्रेष्ठ ज्ञानी है, लेकिन उसके पास चूंकि शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसलिए फिर से वो गिर जाता है। आरोह कृष्ण परम पदम तथा पदम तथो अनादृत, आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं तो बड़े कष्ट से जो है ना वो परम पद को पहुंच भी जाएं तो फिर से पतन तथा नीचे गिर जाते हैं। ये निर विन्दाक्ष विमुक्त मानस तो ये भाव अभिशुद्ध बुद्धिया, आपके प्रति उनकी भावना अस्त हो चुकी है, अस्त भाव अस्त हो गया है, जैसे सूर्य का अस्त हो जाता है, सूर्यास्त है ना। तो पहले भाव रखते हैं भगवान के प्रति, क्योंकि कहते हैं भाई भगवान का रूप काल्पनिक है, तो पहले कल्पना में आप जो है भगवान की भक्ति करते हैं, है? तो वो जो है भाव होता है उनका, लेकिन फिर क्या होता है कि अपने को मुक्त समझते हैं, फिर एक ऐसा बिंदु आता है जब वो सोचते हैं अब तो मैं मुक्त हो गया, तो फिर भगवान के प्रति भाव अस्त हो गया उनका, अब तो हम ही भगवान बन गए, अब क्या जरूरत किसी और भगवान की, है? तो कल्पना जो उन्होंने की थी भगवान की वो अब छोड़ देते हैं, अब भाव उनका समाप्त हो गया, अब हम भगवान बन गए, अपने को मुक्त समझते हैं। तो ये भाव अभिशुद्ध बुद्धिया, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए उनका भाव समाप्त हो जाता है भगवान के प्रति। तो इतने कष्ट से परम पद को प्राप्त किया लेकिन फिर से गिर जाते हैं, तो क्या फायदा। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि जो मायावादी होते हैं उनके संगठन अलग अलग होते हैं या एक ही संगठन है? मायावादी संप्रदाय, ये मायावादी जो है अपने को बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हम मायावादी हैं, और शंकराचार्य जो है ना मायावाद के प्रवर्तक हैं, है ना। ये शंकराचार्य का मायावाद है। तो शंकर संप्रदाय वही मायावादी संप्रदाय है, मायावादियों की गुरु परंपरा है, मायावादी संप्रदाय कहलाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिले थे तो उनके भी शिष्य 10,000 शिष्य थे उनके काशी में। मायावादी संप्रदाय बड़े जो है ना मतलब गौरव से वो कहते हैं कि भाई हम मायावादी हैं, है ना। उनका प्रश्न कि महात्मा गांधी ने जो देश की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म किया वो क्या गलत है? हाँ, कर्म बंधन, देश की इंद्रिय तृप्ति हो, हर देशवासी को जो है सुख सुविधाएं प्राप्त हो, है ना, तो सब भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। क्योंकि भगवान की योजना के अनुसार हर व्यक्ति अपने अपने कर्म का जो है ना फल प्राप्त हो रहा है, और कोई जो ना सुखी है, कोई दुखी है, और कोई अमीर है, कोई गरीब है, सब है। तो आप क्यों जो है हर देशवासी को इंद्रिय तृप्ति की सब प्रकार की सुविधाएं देना चाहते हैं? अब ये सब भगवान से विमुख, देशवासी सब भगवान से विमुख है, और आप उनकी जो ना सेवा में लगे हुए हैं, तो वो जो है भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो जो आप कर्म बंधन से छूटते हैं। क्योंकि तो भक्त जो है जो भगवान को समर्पित है, आप उनको अगर समर्पित होते हैं, उनको अगर आप प्रसन्न करते हैं, तो आप जो है कर्म बंधन से छूटते हैं, है ना। लेकिन जो अभक्त हैं उनके लिए अगर आप कर्म करते हैं तो आप कर्म बंधन से बंधते हैं। तो मतलब कहने का यही है कि आप अगर कर्म बंधन से छोड़ना चाहते हो तो भगवान को समर्पित हो, ठीक है ना। नहीं तो आप कर्म बंधन से नहीं छूटोगे। आप कर्म बंधन में बंधना चाहते हो तो ठीक है, बंधो। मुख्य चीज यही है कि सबसे पहले अपने लिए सोचना चाहिए। हम देश के लिए कर्म कर रहे हैं और हम जा रहे हैं नरक में, तो क्या फायदा? सबसे पहले तो अपना उद्धार करना चाहिए व्यक्ति को, है कि नहीं। क्योंकि ये एक नास्तिक सिद्धांत है कि भाई जो है ना भगवान की व्यवस्था के अनुसार जो है ये दुख पा रहे हैं, वो दुख पा रहे हैं, तो मैं कुछ ऊंची व्यवस्था करूं कि भाई इनको सुख मिले, इनको सुख मिले। जब भगवान कह रहे हैं दुख खा ले, हम ये भौतिक संसार दुख खा ले, अगर आप किसी की सहायता कर सकते हो तो यही कि उसको कृष्ण भावना मृत प्रदान करो, जिससे कि वो इस संसार को छोड़ करके और भगवान के धाम में जाए। लेकिन नहीं, इस भौतिक संसार को आप सुखालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो पहले से ही दुखालय बनाया गया है, दुख भोगने के लिए बनाया गया है। तो आप अपने लिए आप चाहते हो सुख की व्यवस्था करना, या दूसरों के सुख की व्यवस्था करना चाहते हो, तो ये सब भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। क्योंकि सृष्टि, भौतिक सृष्टि का जो मूल प्रयोजन है वो क्या है? जीवों को कष्ट पहुंचाना है। मनुष्य के जीवन में एक यही अवसर है कि वो सोच सकता है कि भाई यहां पर दुख है ही दुख है, तो मुझे ऐसे कर्म करने चाहिए कि इस संसार में ना रहूं, मैं आध्यात्मिक जगत में जाऊं। आध्यात्मिक जगत की जो रचना है वो पहले से ही हुई है सबको सुख और सुविधाएं प्रदान करने के लिए, है ना। तो फिर आप क्यों इस भौतिक संसार में सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना चाहते हो कि यहां पर कोई दुख ना हो, असुविधा ना हो, क्यों? लेकिन नहीं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने का मतलब यही है कि भगवान जो है ना नहीं चाहते हैं कि संसार में आप रहो, भगवान नहीं चाहते हैं। माम वेत्य पुनर्जन्म दुखालय मसासुतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धिं परमां गतः। जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता है वो यही है कि इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना। पुनर्जन्म दुखालय मसासुतम, ये भौतिक संसार जो दुखों का स्थान है, मृत्यु का स्थान है, इसमें जन्म नहीं लेना चाहिए। जो गलती की है हमने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है, तो उस गलती को सुधारो। आप दोबारा जन्म नहीं लेंगे इस भौतिक संसार, है ना। ये भौतिक संसार सही व्यक्ति के लिए नहीं है, है ना। जैसे जेल खाने के अंदर कोई व्यक्ति अपने लिए योजनाएं व्यवस्था करता है कि मुझे सुख सुविधाएं मिले, या दूसरों के लिए, तो वो तो मूर्ख है, क्योंकि उसको प्रयास करना चाहिए सबको ऐसा ज्ञान देने का कि जेल से कैसे बाहर निकला जाए, है कि नहीं, और सरकार से अच्छे संबंध कैसे जोड़े जाएं, जैसे कि जेल में दोबारा आए नहीं, जेल से बाहर भी निकल जाएं और दोबारा जेल में भी ना आए, है ना। तो वो सही ज्ञान होता है। हम भौतिक संसार में क्यों आए, हमने जो है भगवान के विरुद्ध आचरण किया, तो अब भौतिक संसार से बाहर में निकलें और भगवान के विरुद्ध आचरण ना करें, है? तो ये असली ज्ञान है, यही कृष्ण भावना मृत्यु। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न कि मायावादियों के भी मंदिर होते हैं। हाँ, शंकराचार्य जी ने जो है चार मठों की स्थापना की, है ना, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारका और पूर्व में जगन्नाथपुरी, है ना। तो चार मठों की स्थापना की शंकराचार्य ने, है ना, और उनके जो शंकराचार्य सब आदि शंकराचार्य कहलाते हैं। हालांकि आदि शंकराचार्य तो एक ही हैं, लेकिन अभी भी जो शंकराचार्य होते हैं वो आदि शंकराचार्य कहलाते हैं ना? तो वैसे भगवान की पूजा का जो है समर्थन है मायावादी सिद्धांत में, लेकिन तत्व से वो क्या मानते हैं कि जब हम जो है ज्ञान के शुद्ध धरातल पर आ जाएंगे तो फिर हम क्या हैं, हम ही भगवान हैं, ठीक है ना। इनका प्रश्न है कि मायावादी भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, फिर विग्रह कहां से आ गया? वो कहते हैं कि आपको जो है शुरू में कल्पना करनी होती है भगवान के रूप की, है ना। अपराध है, बहुत अपराध है ये कि भगवान के रूप की कल्पना की करनी होती है और सेवा की भावना जो है आपको विकसित करनी होती है, और इस सेवा की भावना से जब आप जो है मतलब शुद्ध हो जाते हैं तो फिर आप आप हो गए भगवान, है, और जिन भगवान की सेवा कर रहे थे वो खत्म हो गए, है ना। बहुत जो है बहुत ही गलत है, बहुत अपराध है ये, है ना। तो शुरू में ही जो है ना जब इस प्रकार का भाव रहता है तो वो सेवा होती ही नहीं, ये तो पूतना जैसा भाव है, पूतना जैसे कृष्ण को मारना चाहती है और स्तन पिलाने आई है, लेकिन पहले से उसका भाव है मारने का कि मैं मार डालूं इनको। इसी प्रकार से पहले से ही उनका भाव रहता है कि ये भगवान जो है इनको हम खत्म कर देंगे, अभी हमें मुक्त होने के लिए इनको इनकी पूजा कर रहा हूं, है ना। तो ये मायावादियों की जो भक्ति है वो भक्ति है ही नहीं वास्तव में, है ना, कपट है, बहुत द्वेष है, ये जहर, इस भक्ति में जहर मिला हुआ है। जैसे पूतना स्तन पिला रही है कृष्ण को, दूध पिला रही है, उसमें जहर मिलाया हुआ उसने, है कि नहीं। तो मायावादियों की जो भक्ति है, पूजा है, जहरीली होती है, विषैली होती है। तो भगवान जानते हैं तो भगवान क्यों स्वीकार करेंगे, है ना, ऐसी भक्ति को भगवान क्यों स्वीकार करेंगे जिसमें कि जहर मिला हुआ है, है कि नहीं। उन्हें तो पता है, किसी और व्यक्ति को आप धोखा दे सकते हो, है कि नहीं, कि भाई आगे चल करके मैं जो है इसको मार डालूंगा और इसकी सब संपत्ति छीन लूंगा, अभी मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, है ना। लेकिन भगवान तो पहले से ही जानते हैं, है ना, कि इनके जो ना विचार किस तरह के हैं, कि आगे चल करके मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा और भगवान को खत्म कर दूंगा, है कि नहीं। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, दसवें अध्याय में, यो मां मजम अनादिम चा वेति लोक महेश्वरम, जो मुझे अजन्मा और अनादि मानता है, अजन्मा अनादि और लोक महेश्वरम मानता है, तो सब लोगों का ईश्वर हूं मैं, महाईश्वर हूं, अजन्मा हूं अनादि हूं, हमेशा वे ईश्वर थे और हम दास थे, है ना, पर हमेशा हमेशा हम दास ही रहेंगे और वे ईश्वर ही रहेंगे। असमूढ़ समर्थित, वही मनुष्यों में असमूढ़ है, मतलब सम्मोहित नहीं है, मूर्ख नहीं है, असमूढ़ समर्थेश सर्व पापे प्रमुचते, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, सब पापों से वो मुक्त होता है। कैसे? वो अपने को नित्य दास मानता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, ये नहीं है कि मुक्ति के बाद जो है ना मैं दास नहीं रहूंगा, इसे ब्रह्मा जी ने श्रीमद भागवत में यही तो बताया कि आरोह कृष्ण परम पदम तथा पदम दो अनादर युष्म दंग्रिया, आपके चरण कमलों का फिर वो निरादर करते हैं, इसलिए नीचे फिर गिर जाते हैं। अपने को विमुक्त मान लिया और आप भगवान के चरणों का निरादर करने लगे, अब भगवान के चरणों का आदर नहीं कर रहे हैं तो फिर से गिर जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु शिला प्रभुपाद के श्री श्री राधा पार सारथी ललिता विशाखा के श्री श्री गौणताय भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम राम राम।